नारायण 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 राम 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 राम
जागृत के बारे में बताइए। तो जागृत जो आप नाक से सांस लेकर बाहर निकाल के बताइए,
वो आप पहले क्रिया बताइए, उसका नाम जागृत सुश्रुति नहीं है।
उसमें पहले तो बांध लेता है, बांध लेगा और पीछे जब कोई भी चीज का भांग नहीं रहेगा वो अवस्था मन की दो अवस्था होगी।
वो जो कुछ भी भांग नहीं रहे वही जागृत सुश्रुति होती है। श्वास प्रसारण प्रसारण नेत्रों की क्रिया तो पहले बताया कि संकल्प विकल्प बहुत उठते हैं विचार में, तो वे कैसे शांत हुए, उनके शांत करने के लिए तैयारी की है, वो जागृत सुश्रुति नहीं है।
वो
जागृत
सुश्रुति नहीं है और वो करण सापेक्ष है।
कर्ण सापेक्ष हो तो
अपने
आप कर्ण सापेक्ष क्यों पंचायती में पढ़ो, उसमें कर्ण कुछ नहीं पड़ेगा।
अच्छा,
कर्ण निरपेक्ष में कर्तृत्व अभिमान भी नहीं है। कैसे कर्ण कर्ण होगा उसमें? कर्ण तो साधक तमाम कर्णों में होता है,
वो तो अपने आप होगी,
अपने आप तो वह कुछ भी चिंतन न करे। ऐसे मैं दो तीन बार कह दिया ना, करना क्या है कि कुछ नहीं करना ही करना है। हाँ, तो कुछ नहीं करना ही करना है वहाँ। मतलब कुछ नहीं करना मैं करता, कारण मैं कर्म संप्रदान पालन करूँ। ठीक है। नारायण 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 नारायण। सुबह एक भाई ने कह दिया कि जैसे जागृत में अहम जागृत रह देता है, ऐसे सुसुप्ति में जागृत कैसे रहे। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, गीता तो निर्ममो निरहंकार शांति मत गच्छति, निरहंकार की बात कहती है। ममता और अहंता है ये ही बंधन है। मैं मेरे की जेवड़ी गड़बड़ी और संसार दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार। ये मैं और मेरा यही रस्सी है, इससे ही संसार बंधना होता है। तो कबीर क्यों बधे जिसके राम आधार है, मैं और मेरा आधार नहीं है। मैं और मेरा आधार है उसका बंधन होता है। तो मैं रहना नहीं चाहिए जागृत में भी, तुम कहते हो सुषुप्ति में मैं रहे, तो ये कोई काम की बात नहीं है। तो मैं तो हटना है, अब मैं कैसे हटे। इस वजह से मैंने कहा जागृत में तीन अवस्था होती है, जागृत में जागृत होती है, जागृत में स्वप्न होता है, जागृत में सुषुप्ति होती है। तीनों अवस्था जागृत अवस्था में होती है। ये एक नई सी बात लगती है, आप वो सुन मैंने ये बात कही थी। तो जागृत में जागृत क्या है, जागृत में स्वप्न क्या है, जागृत में सुषुप्ति क्या है, इन तीन बातों को कम से कम कम से कम कम से कम आप वाणी से बोल सको, सुन सको, कह सको, सुना सको, इतनी तो समझ लेनी चाहिए ना, कम से कम इतनी तो समझनी चाहिए ना। जागृत में जागृत क्या है, जागृत में स्वप्न क्या है, जागृत में सुषुप्ति क्या है, बातों के द्वारा जो शास्त्र पर जुड़ा बातों समझ लेगा ईश्वर से। तो जागृत में जागृत वो है जो सावधानी से हम काम करते हैं, ठीक तरह से सावधानी पूर्व खाना पीना बैठना उठना सोना जगना बात करना, ये जो सावधानी पूर्व काम करते हैं वो सावधानी पूर्व करना है जागृत की जागृत। और जागृत की स्वप्न वो होती है अवस्था कि जिसमें अभी जागृत से कोई संबंध नहीं है, ऐसे पूरा हो जाए, अचानक कोई बात याद आ जाए और उसमें मन लग जाए या उसका चिंतन होने लगे, पता ही नहीं यहाँ जागृत का पता ही नहीं, ख्याल ही न रहे, केवल वो मनोराज्य ही चलता रहे, यह है जागृत का सपना। ये जागृत में स्वप्न होता है, ख्याल आई कि नहीं, कम से कम इतनी बात है, सीख तो लोग कोई सुनावे तो सुन ले सीख ले। तो जागृत की स्वप्न अवस्था हुई वो। अब जागृत की सुषुप्ति क्या है कि ना तो जागृत की चिंतन है, ना जागृत की याद रहे, ना चिंतन हो कुछ भी, भीतर का भी चिंतन नहीं, बाहर की भी कोई क्रिया नहीं, बाहर की क्रिया जागृत हुई, भीतर का चिंतन स्वप्न हुआ, अब कोई बाहर भीतर की क्रिया नहीं है और चुपचाप शांत है। तो ऐसी अवस्था में नींद आती है, तो नींद में कुछ भी याद नहीं रहता, तो नींद में अहम को भूल जाते हैं और उसमें होश नहीं होता, बेहोशी में रहते हैं। तो होश तो भूले नहीं, याद है ठीक तरह से, नींद का अंश भी नहीं है और चिंतन भी कुछ नहीं है, ऐसी अवस्था होती है, वो जागृत सुषुप्ति है। जागृत अवस्था में सुषुप्ति मन कुछ भी याद नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं, एक बैठे चुपचाप हो गया, तो जागृत सुषुप्ति है, उसमें असली बोध होता है, जिसको ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, वो तत्व प्राप्त होता है जागृत की सुषुप्ति में। अब वो जागृत सुषुप्ति कैसे हो, उसके लिए दो क्रिया बताई मैंने। वो जागृत जागृत सुषुप्ति नहीं है, जागृत सुषुप्ति की तैयारी है कि कैसे करें। मन चुप हो जाते, मन में फूल होती रहती है, मन में तैरते बात आती ही रहती है, अब वो सब भूले कैसे, तो उसके लिए मैंने उपाय बताए दो। एक तो श्वासों की क्रिया बताई, श्वास है उसमें ऐसे फुंकार से श्वास छोड़ा जाए, दो तीन बार छोड़ करके बाहर ही रख दे, श्वास को बाहर ही रख दे, हो जाए उस समय में एक क्षण भर हो जाए, वृत्ति रहित होती अवस्था, वृत्ति रहित अवस्था होती है, और वृत्ति रहित अवस्था का नाम ही जागृत सुषुप्ति है, इसमें कोई फुरना नहीं और ख्याल ही नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं, पूर्ण ही कुछ नहीं, उसको जागृत सुषुप्ति कहते हैं। तो जागृत सुषुप्ति के लिए फूना दूर होती है, फूना दूर होती नहीं कष्ट क्षण जात कर्म किसी अवस्था में कोई भी क्षण मात्र भी बिना किए कर्म किए बिना रहता नहीं, क्षण मात्र भी तर्क करने का काम चलता ही रहता है। तो उन संकल्पों को कैसे हटावे, उस हटाने के लिए युक्ति बताई कि ये प्रसर्जन करना बार 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 श्वास यूं करके या फिर श्वास को बाहर ही रोक दो, एक सेकंड दो सेकंड के लिए वो कुछ फूरना नहीं रहेगा, कुछ भी फूरना नहीं रहेगा, करके देखो अभी, ये कोई ज्यादा अभ्यास की ज्यादा योग्यता की जिंद नहीं है, अब आए कोई कर देख लो अचानक कुछ याद नहीं है। तो ये क्षण होता है, ये समाधि क्षण है, जैसे अरब रुपयों का एक पैसा भी अरब रुपयों का अंश है, ऐसे ये जो कुछ भी चिंतन न होना ये जागृत सुषुप्ति का अंश है, ये मामूली चीज नहीं है, बहुत ऊंची चीज है, अगर हो सके 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार दिन में आप करो तो बड़ा बल मिलेगा। ये काम क्रोध लोभ आदि आ जाते हैं, शोक आ जाता है, हटता नहीं है, तो ये क्या है? ये है निर्बलता। जो वेग आता है उसको हम रोक नहीं सकते, तो ये हमारे में बल नहीं है। वो बल आ जाएगी इससे, ऐसे वृत्ति रहित अवस्था को आप पहचान लोगे तो आप में एक बल आ जाएगा, एक शक्ति आ जाएगी, तो शोक चिंता आदि आपको सताएंगे नहीं, काम क्रोध लोभ आदि आपको सताएंगे नहीं। ये आएंगे तो इतने बल नहीं आएंगे जिसमें आपको गिरा दे, आपको अपनी स्थिति से च्युत कर दे, ऐसा बल नहीं होगा। आप में बल आ जाएगा, आप में खुद में इन वृत्तियों के हटाने का, सहने का बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। तो वो शक्ति काय में है जो स्थिरता में है। मेरी बात को कृपा पूर्वक आप सुने। जैसे अपने चलते 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 थक जाते हैं तो किसी दूसरी छाया में बैठ जाते हैं, तो बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर चलने की शक्ति आ जाती है। दौड़ते दौड़ते आदमी दौड़ता ही रहे दौड़े गिर पड़ेगा तो पड़े पड़े में ताकत आ जाएगी, सोते स्वभाव फिर चलने की, बोलते 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 बोलना बंद नहीं करे, बोलता ही रहे तो बोलने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर चुप रह जाओ थोड़ी देर बोलने की शक्ति आ जाएगी। शक्ति निष्क्रियता से आती है, काम धंधा करते करते नींद आती सो जाओ, सोने के बाद बोलने की देखने की चलने फिरने की ताकत आ जाती है। तो ताकत सब भरी हुई है निष्क्रियता में, क्रियता में नहीं है। ऐसी पदार्थ को से हमारे को सुख मिलेगा, ये सुख तब मिलेगा जब पदार्थों का सहारा छूट जाएगा, भीतर से पदार्थों का महत्व भर जाएगा। उस समय में जो सुख मिलेगा पदार्थों का भी मिलेगा है ही नहीं। ऐसे ही क्रिया से सुख मिलता है, क्रिया से भोग होता है, इन भोग में रोग होता है, इससे थकावट होती है, मन की शक्ति क्षीण होती है, और चुप रह जाओ तो शक्ति संचय होता है। क्रिया रहित होने से एक ताकत आती है भीतर, तो क्रिया रहित होने में ताकत है, वो परमात्मा स्वरूप जो स्वयं, उसमें सब शक्ति वहां से आती है। हम लोगों में ताकत बोलने चलने खाने पीने की बात करने की शक्ति आती है, तो शक्ति वो स्थिरता में है, स्थिरता में शक्ति है। तो वह स्थिरता कैसे हो? वो स्थिरता हरेक की होती है, ख्याल नहीं होता, वो हो वृत्ति होती है। थोड़ा और ख्याल करें, ये तो मैं ख्याल करने की ये बताई कि स्थिरता से ताकत आती है, इस तरफ आपका ख्याल करना। बोलते बोलते चुप आ जाओ तो बोलने की शक्ति आ गई, काम करते करते थक जाओ तो बैठ जाओ, काम करने की ताकत आ जाएगी, चलते चलते थकावट हो जाओ तो आप बैठ जाओ, फिर विश्राम करो, चलने की ताकत आ जाएगी। तो ताकत निष्क्रिय तत्व से मिलती है और सक्रिय में ताकत नष्ट होती है, ये सिद्धांत है। इसको समझ ले तो आदमी कुछ तो होश आ जाता है उसके, नहीं तो अभी तो पदार्थ हमारे क्रिया में ही ताकत मानते हैं आप, ये क्रिया रावण पदार्थ शक्ति का नाश करने वाली है, आपका पतन करने वाली चीज है, इनसे रहित होने पर आप में ताकत आती है। जो आदमी काम करता है वो काम करता है न करने से शक्ति आती है उसमें, खेत का काम करो तो थोड़ा सा विश्राम ले लो होगा ठीक, चलो तो थोड़ा बैठ जाओ विश्राम ले लो फिर काम होगा, बंदर को आपने देखा नहीं कूद तो कूद बैठ फिर बैठ जाता है, फिर बैठ बैठ फिर कूदता फिर चलते बैठ जाएगा, तो बैठने से क्या होता है? चलने की शक्ति आती है, ताकत आती है। पशुओं में पक्षियों में सब में ऐसे आप में भी शक्ति आती है, आप ख्याल नहीं करते, इधर ख्याल करो तो आप खुद को अनुभव होगा कि देखते देखते देखने की शक्ति नष्ट होती है, चुप रहो यहाँ कर भेज लो देखने की ताकत आ जाएगी। तो शक्ति से ये चलने से क्रिया से शक्ति क्षीण होती है, क्रिया के करने में कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान आदि ये कारक होते हैं। अब कर्ण रहित कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है कि इन कर्णों से काम नहीं रहे तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। पर इस बात को तो अब सीख चुके, अब कर्ण निरपेक्ष ध्यान नहीं देते, अब कर्म निपेश कैसे हो, तो उसके लिए विधि बताया कि भाई श्वास पास छोड़े, छोड़ दे, छोड़ने के बाद आप देखो थोड़ी देर कुछ नहीं चिंतन होगा, करके देख लो अभी, ये कोई ऐसी नहीं कोई अभ्यास करने से होगी नहीं, अभी कोई कर लो, चिंतन करके छोड़ दो बिल्कुल, कुछ नहीं चिंतन होगा, तो कुछ नहीं चिंतन ये चाहे इतनी देरी हो, पर ये अवस्था हरेक की हो सकती है, हो सकती है नहीं, होती ही है, ख्याल नहीं करते आप। एक बात याद आई, इसके बाद दूसरी बात याद आती है, तो पहली बात नष्ट हुई, दूसरी बात पूर्ण हुई, तो बीच में खाली रहा मन, उसे विश्राम मिलता है, ये समता है, ये समता ही असली चीज है, परमात्मा का स्वरूप है, संसार में उस समय नहीं रहता है, परमात्मा के स्वरूप में रहता है, तो कर्ण से नहीं कर्ण निपेक्ष है, वो हम क्या कर्ण है, क्या क्रिया है ही नहीं, न कर्ता है न कर्ण है, तो इस तरह से निरपेक्ष समय बिल्कुल कुछ भी चिंतन नहीं, अचानक ऐसी अवस्था होती है। अब होने के लिए मैंने दो बात बताई सर, एक तो प्रसादन विराज बाहर श्वास छोड़ना और फिर बाहर ही रोक देना थोड़ी सी देर, फिर धीरे धीरे तो एक वृत्ति रहती अवस्था होती है, आप करके देखो होता ही नहीं होता है, पूर्णा एक हुई दू छूटी दूसरी पूर्णा हुई तो बीच में संधि में निराकुल होता है, जैसे दोला होता है झूला होता है, वो झूला जो झूलते हैं उसमें झोला यहाँ नकल से बंधा हुआ है, कल्पना करो तो वो झूला इधर जाएगा इधर भी जाएगा, वो झूला होगा, हिंड कहते हैं अपने हिंड से, तो वो जो झूला होता है वो एक लकड़ी के सामने एक समावस्थम आता है, समावस्थम आए इधर जाएगा कैसे, अरे इधर से समावस्था आएगा इधर कैसे जाएगा, तो समावस्था आती है, ऐसे वृत्तियों की क्रियाओं की समावस्था आती है, और वो समावस्था परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, तो उस समावस्था में स्थित रहे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, इसमें कर्ण क्या करेगा, कर्ता क्या करेगा, उद्योग क्या करेगा, क्या उद्योग है उसमें, अब दूरा घूमता है समावस्था में आ जाएगा तो उसमें कुछ करना पड़ेगा, स्वतः समावस्था आवेगी ही, ऐसे कर्म रहित अवस्था होती ही है, हर एक प्राणी की होती है, अब उसको साधन मांगो कर्म निरपेक्ष साधन हो जाएगा, अन्य तो होकर चल जाएगी, आपको कोई लाभ नहीं, आप ख्याल ही नहीं करते उधर, तो ऐसी कर्ण रहित अवस्था हो कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, तो ऐसे चुप रह जाए, अभी आप काम करते करते चुप हो जाओ, कुछ चिंतन नहीं, अचानक स्वाभाविक ही, तो एक तो मैंने बताया प्रसन्न विधान ये, एक बताया आंखें है ना, इसको ही अम्मी से ऐसे 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 करके फिर चुप हो जाओ, तो जितने मन की संकल्प गए है ना उसी कुछ हो जाएगी, कट जाए कट 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 जाए एकदम शांत हो जाएगी, तो ये दो वृत्ति दूर करने वृत्ति स्थिर करने का उपाय बताया, इनसे वृत्ति स्थिर हो जाती है, वो करने के साधना साफ हो जाता है और जागृत की सुषुप्ति हो जाती है, तो क्षण मात्र हो जाए बढ़ाए लो आप दिन में 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार कर लो, कौन मना करता है, तो वो मना करने से ये निर्विघ्न होने की ताकत आप में आ जाएगी, निर्विकल्प में जो शांति है जो सुख है जो ताकत है वो विकल्प संकल्प में नहीं है, निष्क्रिय में जो ताकत है वो क्रिया में नहीं है, क्रिया मतलब हुई नहीं होगी नहीं थकावट होगी, क्रिया करने थकावट होती, बहुत जितना भोगा जाएगा उतना थकावट हो जाती है, खाते खाते खा नहीं सकोगे, पानी पीते पीते पी नहीं सकोगे, देखते देखते देख नहीं सकोगे, कोई क्रिया करो थकावट होगी, उस थकावट का नाम है तृप्ति कहते हैं, तृप्ति होगी सर भोजन कर लिया तृप्ति होगी, तृप्ति का धूल की होगी खा नहीं सकते ताकत नहीं रही, बात होती है वास्तव में शक्ति क्षीणता शक्तिहीनता को तृप्ति कह देते हैं, भोजन कर लिया तृप्ति हो गई, तृप्ति क्या है कि खा नहीं सकते, खाने की शक्ति नष्ट हो गई, अब खाने की ताकत नहीं रही, इसका नाम कहते तृप्ति। तृप्ति नहीं है, थकावट है। थकावट से चुप होते वो शक्ति रहते आप चुप हो जाओ तो आपको बहुत बल मिलेगा, उसमें बल मिलता है तो थकावट की कोई क्रिया नहीं कर सकते, बल मिलेगा आपसे, आप बल मिलेगा भगवान की तरफ से, बल मिलेगा कुछ न करने से करने की ताकत आ जाएगी। तो मैंने ये बीच में पूछा कि ये बातों के द्वारा आप बात समझ गए कि नहीं, अनुभव में न हो चाहे पर बातों के द्वारा तो समझ गए ना ऐसे होता है चीज, तो जागृत में वो सुसुप्ति है। हर एक अवस्था में आप चुप हो सकते, बाहर बैठे हो जी निष्क्रिय तक अनुभव होगा, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, कुछ याद नहीं होगा, शांत है। वो निष्क्रियता है, उसमें ताकत है, बहुत विलक्षण ताकत है, अलौकिक ताकत है, सब करने की ताकत वहां से उत्पन्न होती है। तो उसमें कर्ण करता है ही नहीं, वो तत्व है, उसमें कर्ण कैसे होगा? उसके करने के लिए जैसे मैंने श्वास बताया, आंखों की क्रिया बताई, ये क्रिया उसका साधन है। इसके बाद में निष्क्रियता है, वो उस तत्व की प्राप्ति का साधन है, तो वो कर्ण निरपेक्ष तत्व है, तो उसके साधन भी कर्ण निरपेक्ष है, तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। अरे वो क्रिया नहीं होगी तो अहंकार नहीं होगा, अहंकार होगा तो क्रिया होगी, क्रिया होगी तो अहंकार होगा बीच में, नहीं तो क्रिया कैसे कौन करेगा? अरे क्रिया होगी तो कुछ करने वाला होगा, तो अहंकार है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कर्ता मानता है, इस बात नहीं किंचित करो मिति युक्त हो मैंने तत्वित, तत्ववेत्ता को चाहे मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा माने, तो मान्यता करता हूँ ये मिट जाती है, मिट जाती है जो तत्व रह जाता है, वो तत्व रह जाता है, उसमें प्रकृति का संबंध नहीं है, निर्मोह निरहंकार हो गए, न ममता है न अहंता है, तो तत्व रह गए है जो कहती हूँ, तो शत्रु की प्राप्ति हो जाती है। तो जागृत में भी अहंकार रहित हो जाता है। उसने तो पूछा कि जागृत में जैसे अहंकार रहा, सुषुप्ति में अहंकार कैसे रहे? अरे ये सुषुप्ति में अहंकार नहीं, वैसा जागृत में कैसे रहे? प्रश्न तो ये है करना करने का, असली बात जाननी तो ये है कि इसमें भी ऐसी अवस्था एक होती है। तो इसमें मैं बीच में पूछा कि कम से कम कम से कम कम से कम आप इस बात को बात के द्वारा को समझ गए ना, एक दखल में आ गए ना, तो ऐसी एक निष्क्रिय अवस्था होती है। उस निष्क्रिय अवस्था में परमात्म तत्व में ही स्थिति होती है, सक्रिय अवस्था में भी मात्र जीव की स्थिति परमात्मा में है, स्वतः स्वाभाविक उसमें स्थिति करना नहीं है, की होता है वो होता है प्रकृति का कार्य, इसमें करना पड़ता है, और स्वतः अपने स्वरूप में स्थिति स्वाभाविक है, वो करना नहीं है। क्यों हुई हो तो साथ में अहंकार रहेगा, बुद्धि रहेगी, ये साथ में रहेंगे, जड़ के संबंध बिना कोई अभ्यास नहीं कर सकते, कहीं भी स्थिति नहीं कर सकते, जड़ का अभ्यास जड़ का संबंध रहना पड़े, और संबंध जड़ के संबंध रहित होने पर तत्व स्वतः रहता, कुछ करना नहीं रहता है। आज मैंने कई बार कहा कि करना क्या है, कि कुछ नहीं करना ही करना है, ना फूलना करना, ना संकल्प हो जाए करना, ना संकल्प मिट जाए ये करना, ये भी नहीं करना संकल्प मिट जाए, मिटने की भी इच्छा नहीं, करने की भी इच्छा नहीं, कर्मणि अकर्मी ये इसकी व्याख्या में वहां पर विस्तार किया है, कर्म योग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से, भक्ति योग की दृष्टि से, तीनों दृष्टि बताई वहां, भक्ति योग माम पश्चित सर्वत्र सर्व सब में भगवान को देखे, भगवान में सबको देख चुप हो जाए, और ज्ञान योग में सबको आत्मा में देखकर आत्मा को सब में देखे, सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि, ये हो जाएगा, और योग माम पश्चित सर्व सर्व चली, यही कर्मणि अकर्मी है पश्चित, अकर्मणि कर्मी है, ये कर्म योग में, योग माम पश्चित भक्ति योग में, सर्वभूत समात्मा सर्वभूत आत्मा नहीं, ये ज्ञान योग में, तीन बताई है 29, 30 और 32, लेकिन 18 में साफ है कर्मी अकर्मी है बजे कर्मी कर्मी है, साफ एकदम, आगे उसकी व्याख्या है 5 लोगों में, तो इस दृष्टि को जाना। अब वो चुप आप किस रीति से जाओ, परमात्मा का स्वरूप ले रहे तो जाओ, सगुण का ध्यान करो तो भगवान का ध्यान करके चरणों में चित्र लगाओ, बस वहीं स्थिर होगी चरणों में ही, तो वही बस स्थिर जाएगी, कोई कारण नहीं के साथ दिया, कारण जरूरत नहीं है, ध्यान कर लो, मुख पर लगा लो, वात्सल्य प्रेम है जिसका अपन लाला को बेटा मानते हैं, ये मुख की तरफ देख करके और चुप हो जाता है, देखे नहीं, देखे देख रहे हुआ सब से वृत्ति हटा और भगवान मुख की तरफ देख लिया, देख करके चुप हो गया, तो वही कर्ण निर्विक साधन हो जाएगा, वही समाधि हो जाएगी, वक्ष स्थल में भगवान देख लिया, भगवान ने चरणों में देख लिया, देख कर चरणों में स्थिर होकर फिर कुछ भी चिंतन नहीं करे, तो कुछ भी चिंतन नहीं करेगा उसमें उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, सगुण करो निर्गुण करो कर्मयोग करो कोई करोग नहीं, वो निर्मोह निरहंकार होगा, तो इस स्थिति स्वतः परमात्मा में होगी, देखो ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से जीव मेरा ही अंश है, और मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने, मनसस्थान में मन है बुद्धि है इंद्रिया, ये प्रकृति स्थानी प्रकृति में सिद्ध रहते हैं, और उसको पकड़ लेते हो आप कि मेरा मन बुद्धि है अहंकार है, ये अनर्थ का मूल है, अच्छा ये नहीं पकड़ोगे तो आप में रहेगी, जिसमें प्रकृति का जो कार्य मन बुद्धि इंद्रिया है इनको प्रकृति स्थानी कहा है, मन ये प्रकृति का संग नहीं छोड़ते, आप इनका संग करके परमात्मा से विमुख हो जाते हो, ये गलती होती है, आप परा प्रकृति हो उत्कृष्ट प्रकृति हो, पर उत्तर प्रकृति का नतीजा ये हुआ कि जड़ के साथ मिल गए, जड़ मिलता नहीं आपके साथ में, उस प्रकृति स्थानीय प्रकृति में स्थित रहेगी, हरदम मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्रकृति में स्थित रहेंगे, ऐसे आपकी स्थिति स्वतः परमात्मा में है, स्वाभाविक है, ये जो कृति साध्य मान लेते हैं वो वास्तव में स्थिति नहीं होती है, कृति साध्य से संसार से निवृत्ति होने में सहायता हो जाएगी पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, ये आप समझते हैं कि ये पता नहीं, हमें पता नहीं, आपके ख्याल में आती है अगली बात, बातों के द्वारा ख्याल में आती है ना, इतनी तो आती है, ये तो बड़ी सीधी बात सरल बात है, तो ऐसे चित्त करके कुछ भी चिंतन नहीं करे तब होती जागृत में सुषुप्ति, जैसे सुषुप्ति में कुछ भी याद नहीं रहता परंतु तो खुद याद करने वाला भी याद नहीं रहती, उसमें याद करने वाले की याद रहती है पर याद नहीं रहती है, स्वतः जागृत रहती है, जैसे मनुष्य प्रकृति है ऐसे आप पर परमात्मा के स्वरूप में स्थित होंगे, नींद नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए, फुर्ना नहीं होनी चाहिए, फिर आप किसी परमात्मा में होंगे स्वतः, उसका नाम है जागृत सुषुप्ति, तो जागृत सुषुप्ति में बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, ये बात है, तो जागृत सुषुप्ति है इसके लिए उद्योग करो, कुछ नहीं हमें करना कुछ है ही नहीं, हरदम ये विचार के मेरे को करना क्या है, ऐसे निर्विकल्प होने के लिए अगर आप कृपा करें थोड़ी रोजाना अभ्यास करें तो हमारे कुछ नहीं करना है, चुप हो गए 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार कर दो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बीच में कुछ नहीं करता, तो एक निर्विकल्प होने की ताकत मिलेगी और निर्विकल्प का आनंद आएगा, वो आनंद आप फिर छूटेगा नहीं आपसे, उसमें इतना सुख है जो विकल्प सुख है कि कहीं किसी भोग में किसी संग्रह में सुख हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, तो आपसे आप मन खंच जाएगा तो संकल्प विकल्प होंगे याद आएगी, तो जैसे आंख में कोई फूस पड़ जाए खटखटा है ना, ऐसे संकल्प विकल्प खटकेगा आपको बुरा लगेगा, कब के जब निर्विकल होने का सुख मिल जाएगा, सुत ही स्वाभाविक ही सुख जो मिलता है निर्विकल मिलता है, मैंने बहुत देखते हमारे घड़ी चाहिए और घड़ी जीवन में खूब आई, अगर आपने खरीद ले दी तो घड़ी मिलते ही खुशी आती, तो खुशी वो घड़ी से नहीं आई है, घड़ी से खुशी मानते हैं तो घड़ी देते हो खुशी रहनी चाहिए, घड़ी है भाई तो ऐसा नहीं रहा, तो घड़ी की तरफ वृत्ति दौड़ती थी मन से, वो दौड़ना बंद हो गया तो क्रिया रहित होने से सुख मिला है, मानते पदार्थ से ना पदार्थ में है ना भोग में है, वृत्ति रहित होने से सुख है, तो ये पता है नहीं, कुत्ता हड्डी चबाता है और आपने मसूड़ा टूट जाता है तो खून आता है, वो समझता है गड्डी हड्डी में जा रहा है, ऐसे आप बताती उसको आप समझते इनसे सुख मिलता है, मुझसे सुख कभी मिला नहीं, कभी मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं, इनसे रहित होने पर सुख छूटता ही नहीं, जाता ही नहीं, ऐसे निर्विघ्न होने की अवस्था को आप अगर आदर दो, महत्व दो, तो आप सबको नित्य प्राप्त है एकदम ही, उसमें कर्म कर्ता कर्म समझ कुछ है नहीं, जितने कारक होते हैं प्रकृति में होते हैं, प्रकृति से अतीत नहीं है कारक, तो कारकों से कैसे प्राप्ति हो जाएगी, उसकी कारक रहित ही होता प्राप्ति होती है स्वतः स्वाभाविक, परंतु वो करने की एक आदत पड़ी हुई जो करने ही करना अच्छा लगता है, करने पर रहा नहीं जाता, अब क्या करें अब क्या करें, अरे करना है ही नहीं, और ये बात ना तो मानते हैं ना मानना चाहते हैं, अरे कोई कहे तो मूर्ख मानते हैं, समझ नहीं, ये बेसमझ है, ऐसा सच गलत मिलेगा, तो प्रकृति स्थानीय है मनुष्य संज्ञानी, अरे स्वयं परमात्मा में स्थित है, स्वयं परमात्मा में स्थित है, ये मनुष्य प्रकृति में स्थित है, तो ये तो इतने सपूत है कि दूर जाते ही नहीं, आप अपना मान लेते हो तो ये प्रकृति में स्थित रहती है, आप परमात्मा में स्थित रहते हुए अपने को परमात्मा न मान मन बुद्धि में मान लेते हो, क्यों, आप चेतन हो ना, आप में स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता आपके हानि के लिए है, फायदा नहीं है, इसमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, तो ये बात है, तो जागते हुए बिल्कुल निर्विकल हो जाए, शाम को कीर्तन करते हो तो कीर्तन के बाद मैं चुप होता हूँ, उस चुप में आप निर्विकल हो जाओ, परमात्मा से बहुत सुगमता हो जाएगी, कीर्तन करते करते परमात्मा की स्थिति हुई, परमात्मा चिंतन हुआ, ऐसे कुछ नहीं चिंतन करो, वो कीर्तन आपके भीतर बैठ जाएगा, एकदम भीतर जम जाएगा, तो उससे निर्विकल विचार स्वतः होगी, ऐसे जागते हो जब नींद से उसके बाद थोड़ी देर सुख रहो तो आपकी स्थिति परमात्मा स्वरूप हो जाएगी, नींद लेते समय आरंभ में बिछौने पर बैठ गए कुछ देर कुछ भी चिंतन न करके सो जाओ, सो उसमें न चिंतन करता आपके साथ में कान से ही तक पहुंच जाएगा, तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इतना सुगम साधन है, बढ़िया साधन है, तो कर्ण कहाँ है इसमें, करता भी नहीं, कर्म भी नहीं, कर्म नहीं संप्रदान अपदान कुछ नहीं, ये कर्ण निरपेक्ष साधन है, इस तरह से कैसे होगा, जागृत में सुषुप्ति में हो जाएगा, तो जागृत अवस्था में सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करना है, यही वास्तव में कर्तव्य है, कर्म करना नहीं है, करने से जो प्राप्ति थी धन कमा लिया, बड़ा काम किया, कुछ बड़ा नहीं किया है, सब छूट जाएगा, फोंक निकल जाएगी, करना वो है जो नित्य आपको प्राप्त है, उसको प्राप्त कर लिया कुछ न करके तो महान काम कर लिया आपने, मगर लोग के पास में नहीं है वो ले लिया तो प्राप्त हो गया, होता है नहीं है वो नहीं रहेगा, और ये स्वतः है परमात्मा से वो कर लिया, बड़ा भारी काम कर लिया, तो कुछ नहीं किया बड़ा भारी करना होता है, तो करना क्या है कि कुछ नहीं करना ही है, अब इसमें कोई शंका हो तो आप करो, हाँ लय और विक्षेप है कैसे इस मिटे, विक्षेप मिटने के लिए क्रिया बताई आंखों की और श्वास की, विक्षेप मिटने के लिए, और लय हो तो खड़े होकर घूमने लगे घूम ले फिर बैठ जाओ, नब्जा के सावधान ज्यादा रहना चाहिए, विक्षेप मिट जाएगा, दूसरे तो संतों के संग से मिल जाता है, अच्छे संत मिलते हैं बात करते हैं सुख हो जाते मन लग जाता है, विषय मिल जाता है, राहुल उनकी वाणी से मिल जाएगा, अपने वास्तव में विषय भी मिटाना है, ये मलिनता अनंतकरण की ये मिटाना है, तो राग द्वेष मिटाना है, ये मत करो आप, ठीक हो जाएगा, अब साथ राग और द्वेष ये दो तो ये परिकल्पना रूप शत्रु ये है, इनको मत करो फिर ठीक हो जाएगा, तो मन लगाना इतना दामी नहीं है जितना राग द्वेष हटाना दामी है, मैंने आज के मन फिर कैसे हो, मन एकाग्र कैसे हो, क्यों थोड़ा देखो भाई, दोष ये नहीं है, दोष तो राग द्वेष है, उनको हटाने के लिए उद्योग नहीं होता, ना उपदेश होता, ना व्याख्यान होता है, ये बात तो उनसे रहित होने में चुप हो गया, पांच में अध्याय छठे श्लोक के पांच से पच्चीस वाले 24, 25, 26 श्लोक है ना, छठे अध्याय का उनमें है, और भी कई जगह है, कई जगह है और भी। मानो समय समय उपरम एक बुद्धिया दृढ़ीत या आत्म संस्तम मन कृपा न किंच विचिंतित, ये है श्लोक खास। समय समय ऊपर ऊपर उपराम हो जाए, विरोध नहीं करे, ना करने पर आग्रह रहे ना न करने पर आग्रह रहे, उपराम हो जाए। अपने करने से मतलब है ना न करने से मतलब है, ऐसे समय समय ऊपर में मूल श्लोक ये खास। शरीर से ऊपर में बुद्धि आत्म एक परमात्मा है, ये आदमी मना करता न कर, कुछ भी चिंतन न करे, तो कुछ भी चिंतन करे उसमें स्थिति हो गई। खास मूल में आती है गीता, मूल में है लेकिन चिंतन है। आप करके देखो, मूल पढ़ो, समझ में नहीं आवे तो पूछो, आप अकल में नहीं बैठे तो पूछो। ऐसे चुप रहना है, वो है जागृत की सुषुप्ति। मन संसार की तो याद रहे नहीं और अपने स्वरूप की भूल गए नहीं, और अपने स्वरूप को भूल जाता तो होगी सुषुप्ति, और ये जागृत सुषुप्ति है। जागृत मन अपने स्वरूप को तो याद रहा और कुछ नहीं, स्वरूप को याद करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। सत्य याद मैंने कृष्णा न किंचित न आत्मा का चिंतन करे, न अनात्मा का चिंतन करे, न प्रकृति का, न कुछ कुछ चिंतन। नारायण 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 नारायण।
यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुक्लदास जी महाराज द्वारा गीता भवन सर्वाश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 8 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।